तो अब हम चलते हैं दूसरे अमल पे। अमल नंबर दो है पेज नंबर 24 पे, अहले ज़िक्र की मजलिसों पर फरिश्तों का नज़ूल। अब ये अहले ज़िक्र कौन से हैं, इसको हम पढ़ेंगे तो बात बहुत अच्छी तरह समझ आएगी। फरिश्तों के नज़ूल को पाने वाले लोगों की दूसरी किस्म इन लोगों पर मुश्तमिल है जो ज़िक्र इलाही में मशगूल रहते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप भी मेरे से दोहराइएगा, इन्ना लिल्लाही मलाइकतन यतूफूना फित्तुरुकी यल्तमिसूना أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا قال فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم منهم ما يقول عبادي قال يقول يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك. और एक और अल्फाज में किसी और हदीस में आता है, युमज्जिदूनका काल फयकूलू हल राउनी काल फयकूलून ला वल्लाही मा रऔका काल फयकूलू कैफ लौ राउनी काल यकूलून لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا قال يقول فما يسألوني قال يسألونك الجنة قال يقول وهل رأوها قال يقولون لا والله يا ربي ما رأوها قال فيقول فكيف لو أنهم رأوها قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وعزم فيها رغبة قال فمما يتعوذون قال يقولون من النار قال يقول وهل رأوها قال يقولون لا والله يا ربي ما رأوها قال يقول فكيف لو رأوها قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة قال فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة قال هم الجلساء لا يشقى جليسهم. कितनों को सिर्फ अरबी से कुछ मफहूम समझ आया? माशाल्लाह, गुड, पढ़ते हैं। बहुत प्यारी रिवायत है। अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो अल्लाह ताला का जिक्र करने वालों को तलाश करते हुए रास्तों में घूमते फिरते हैं। जब वो किसी ऐसी जमात को पाते हैं जो अल्लाह के जिक्र में मसरूफ़ होती है, तो वे एक दूसरे को पुकारते हुए कहते हैं, इधर आओ, यहाँ तुम्हारी हाजत यानी मतलूबा चीज़ है। पहले मजलिस को आसमाने दुनिया तक अपने परों से ढांप लेते हैं, यानी जैसे अब आप और मैं यहाँ हैं, तो यहाँ से लेके ऊपर जितना आसमान है इस तरह से, आप बताएं कितनी तहें लगती होंगी, इस तरह तहों की तहें ऊपर और कहाँ तक कि आसमान तक पहुँच जाते हैं। जब वो वहाँ से फारिग होकर अल्लाह के पास जाते हैं तो इनका रब इनसे पूछता है, हालांकि वो खूब जानता है मेरे बंदे क्या कहते थे। फरिश्ते जवाब देते हैं, वो तेरी तस्बीहो तकबीर और तेरी तहमीदो तमजीद कर रहे थे। अल्लाह ताला इनसे पूछता है, क्या उन्होंने मुझे देखा है? फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह की कसम उन्होंने तुझे नहीं देखा। अल्लाह ताला फरमाता है, अगर वो मुझे देख लें तो इनका क्या हाल हो? फरमाया, फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, वो अगर तुझे देख लें तो वो तेरी और ज़्यादा पाकीज़गी बयान करें। अल्लाह ताला सवाल करते हैं, वो क्या मांगते हैं? फरमाया, फरिश्ते जवाब देते हैं, वो तुझसे तेरी जन्नत मांगते हैं। फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या उन्होंने मेरी जन्नत देखी है? फरमाया, फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, नहीं अल्लाह की कसम, ए रब, उन्होंने जन्नत तो नहीं देखी। फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, अगर वो जन्नत देख लें तो इनका क्या हाल हो? अगर वो जन्नत देख लें तो इनका क्या हाल हो? फरमाया, फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, अगर वो इसे देख लें तो इसके लिए इनकी हिर्स और तलब और ज़्यादा शदीद हो जाए और इसमें इनकी रग़बत और ज़्यादा बढ़ जाए। अल्लाह ताला पूछते हैं, वो किस चीज़ से पनाह मांगते हैं? फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, वो जहन्नुम की आग से पनाह मांगते हैं। फरमाया, अल्लाह ताला पूछता है, क्या उन्होंने इसे देखा है? फरमाया, फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, नहीं अल्लाह की कसम, उन्होंने उसे नहीं देखा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर वो इसे देख लें तो क्या हाल हो? फरमाया, फरिश्ते कहते हैं, अगर वो उसको देख लें तो इससे कहीं ज़्यादा इससे दूर भागें और इससे ज़्यादा डरें। फिर यानी ज़रा सा भी कभी टंग स्लिप भी हो जाती है कोई तो वो भी ना हो। फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, बस मैं तुम्हें इस बात का गवाह बनाता हूँ कि मैंने इनको बख्श दिया। अब अल्लाह ताला तो सबको बख्शना चाह रहे हैं, ज़रा देखिए फरिश्ते क्या कह रहे हैं। आपने फरमाया, फरिश्तों में से एक फरिश्ते ने अर्ज़ किया, अल्लाह, इनमें फ़लाँ आदमी इनमें से नहीं था, यानी जो इस नियत से नहीं आया था उसका यहाँ कोई और मकसद था। मैं भी रास्ते में जूतियाँ देखी पड़ी हुई का देखो अंदर क्या हो रहा है, या कोई चीज़ लेने देने आया था, यानी उसकी नियत ये नहीं थी सब कुछ के जन्नत मांगे, जहन्नम से बचे, तेरे से बातें करे, तो वो तो इस नियत से नहीं आया। वो तो सिर्फ एक काम के लिए आया था कि इनके साथ मजलिस ज़िक्र में बैठ गया, यानी उसकी सीखने की नियत ही कोई नहीं थी, बस वो तो काम के लिए आया था। अल्लाह ताला फरमाता है, ये अल्लाह को याद करने वाले ऐसे हम नशीन हैं कि इनके साथ बैठने वाले भी महरूम नहीं होते। यानी जैसे आप देखें ना, कोई खुशबू लगाता है ना, तो उसके साथ दूसरे को भी तो थोड़ी सी उसकी आई जाती है ना खुशबू। यानी इल्म वाली महफिल इतनी खूबसूरत है कि कोई इधर आकर ऐसे ही बग़ैर नियत के भी बैठ जाता है, या कहता है चलो मैं देखता हूँ, चलो मैं ऐसे ही जाके सुन लेता हूँ, मैंने कौन सा स्टूडेंट बनना है, मैं ऐसे ही तो कर लूँ, तो उसको भी अल्लाह ताला महरूम नहीं करते। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको मज़ीद पढ़ के बाद, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें हम पॉइंट्स उठाएँगे इंशाल्लाह। इस हदीस में जहाँ अहले ज़िक्र की फ़जीलत बयान की गई, वहाँ इनके हम नशीन लोगों को इस अज़मत में शामिल कर लिया गया। गोया के उम्दा मजलिस बायस निजात होती है। अहले ज़िक्र की शान को मज़ीद उजागर करने वाली एक और हदीस है जिसको आयमा तिरमिज़ी इबन माजा हाकिम ने हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको हम बाद में देखेंगे। पहले जो पिछली हदीस में चंद बातें जिसको हाईलाइट करना ज़रूरी है, ये आप लोग नोट करेंगे। पहली बात देखिए कि अल्लाह ताला क्यों पूछ रहे थे फरिश्तों से, क्या अल्लाह को नहीं पता? अल्लाह ताला को सब कुछ पता है। इसकी दो तीन रुजीहात, इस पर बहुत लंबी शरह है हदीस में, लेकिन मैं उसका ख़ुलासा आपको बता देती हूँ कि अल्लाह ताला खुश होकर पूछ रहे थे। कैसे? वैसे आपको पता होता है आपका बच्चा फर्स्ट आया है, पर आप उसके मुँह से सुनना चाहते हैं, प्यार आता है अल्लाह को। ठीक है, दूसरी बात, अल्लाह ताला फरिश्तों को गवाह बना रहे। अल्लाह ताला को तो सब पहले ही पता है, उसको क्या नहीं पता? उसको तो उस वक्त भी पता था जब हमने इधर आने का इरादा भी नहीं किया था, लेकिन अल्लाह ताला तो सब जानता है। तो अल्लाह ताला खुशी के साथ करते हैं, और उस बात को जैसे हम किसी चीज़ से खुश हो ना, बार बार उसको दोहराते हैं। बच्चे की एक बात होती है तो उसको हम बार बार दूसरों को सुनाते हैं बोल बोल के, अल्लाह ताला को प्यार आ रहा होता है उन पर। दूसरी बात, इस हदीस से बहुत सारे लोग ये भी सोच सकते हैं कि ज़िक्र से मुराद इसमें वो ज़िक्र है जो आज हमारे यहाँ रिवाज के तौर पे नाजिल है। थोड़ी सी बात है, क्योंकि ये मौजू चल रहा है और इंशाल्लाह आगे ज़िंदगी रही तो आपको ये बुक भी पढ़ानी है, कहीं ना कहीं मौका आएगा ना इज़कार नाफ़िया। तो हमारे यहाँ जो लफ्ज़ ज़िक्र है ना, ये भी मिसअंडरस्टूड है। एक लफ्ज़ लिखिए ज़िक्र और उसके ऑपोजिट या उसके बिल मुकाबिल लिखिए विर्द। विर्द की जमा होती है औराद और ज़िक्र की जमा होती है अज़कार। ठीक है, एक तरफ हम बोलते हैं ज़िक्र अज़कार और दूसरी तरफ हम कहते हैं विर्द। ज़िक्र के नीचे लिखिएगा याद। ज़िक्र क्या है? बार बार कुरान में पढ़ चुके, फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, अल्लाह कहते हैं मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। फिर ज़िक्र का लफ्ज़ कुरान हदीस में जिन लफ्ज़ों में आया है उसमें सबसे खूबसूरत लफ्ज़ क्या है? सूरत हिजर की आयत आप में पढ़ के आए हैं कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान का नाम ज़िक्र है। ठीक है, फिर ज़िक्र की मुख्तलिफ़ सूरतों को अगर देखें तो ज़िक्र क्या होता है? अल्लाह को याद रखना, अल्लाह को याद करना, अल्लाह के कुरान को सीखना पढ़ना करना। ठीक है, इसके ऑपोजिट दूसरी तरफ आप देख रहे हैं विर्द, और विर्द की जमा औराद। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा, जब वो मदियन में गए तो क्या हुआ? वरदा, बकरियां आती थी पानी पीती थी। तो विर्द कहते हैं किसी चीज़ पे यूं हाथ से अगर आप देखें दोहराना, विर्द क्या है? सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, अल्लाह को आप देखें ना तस्बीह अगर आपके हाथ में तो सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, ये जो कैफियत है ना दोहराना दोहराना, इसको विर्द कहते हैं। ठीक है, आज हमारे कल्चर की, इंडो पाक कल्चर की बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, उन्होंने विर्द को जिक्र समझ लिया। बस इतनी बात समझ है, सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, कोई पता नहीं दिल में अल्लाह की सुबान है कि नहीं, पता नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, 100 दफ़ा पढ़ें और एक दफ़ा पढ़ ले ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन तो दिल बंद हो जाता है अपने गुनाहों के हिसाब से, लेकिन वो सिर्फ विर्द करते हैं। तो इस महफिल में कौन सा जिक्र मुराद है? अब ये क्वेश्चन है। बाद लोग ज़िक्र के नाम पे मजलिसें बर्पा करते हैं, बड़ी बड़ी 500-500 दानों की तस्बीहें हैं, लाइट बंद कर दो, ज़िक्र करो, तसव्वुर करो, नबी के रोज़े पे पहुँचे हो, तुम मुड़ रहे हो, तुम ये हो, क्या ये ज़िक्र है? ये ज़िक्र नहीं है। ये मन माना विर्द तो हो सकता है। ज़िक्र क्या है जिसको आप देखिए इस हदीस से दलील मिल रही है, वो क्या कह रहे थे? आप देखिए ना, तीन चीज़ों की बात है ना, फरिश्तों से अल्लाह ताला क्या पूछते हैं, क्या बात कर रहे थे? तो पहली चीज़ क्या कही थी फरिश्तों ने, क्या अल्लाह फरिश्ते तुझे याद कर रहे थे, तेरी तहमीद कर रहे थे। अल्लाह ताला कहते हैं कि उन्होंने मुझे देखा। आप ये मुझे बताइए कि सिर्फ ज़ुबान से सुभानअल्लाह 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 कहने से कोई देखने की ज़रूरत पड़ती है? इससे पता चलता है कि अगर कोई सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह ताला की बुजुर्गी बयान करता है तो वो साथ सोच भी रहो। सिर्फ ज़ुबान से मत पढ़ें, दिल में तसव्वुर लेकर पढ़ें। तो गोया कि ये तो वो महफिल हो गई कि जिसमें बंदा अल्लाह की तारीफ़ें कर रहा है, अस्माल हुस्ना पढ़ रहा है, गौर कर रहा है। अब जिक्र करना कैसे है? जैसे नबी ने करके बता दिया, नमाज खुद जिक्र है। 21वें पारे की पहली आयत ले लीजिए, सूरत कसस ही गालिबन बनती है कि वाला जिक्रुल्लाह अकबर, नमाज की बात है। तो जिक्र में नमाज भी आती है, जिक्र भी है। फिर अगली बात से देखिए कि क्या मांग रहे हैं, जन्नत और जन्म। ये कब मांगते हैं? अपर में जब हम कुरान पढ़ रहे होते हैं, बीच में जन्नत की आयतें आती है तो जन्नत की दुआ करते हैं, जहन्नम की बात आती है तो उससे बचते हैं। तो समझ लीजिए कि इस हदीस का इतलाक बेसोचे समझे पढ़े जाने वाले या बोल किसी मनमाने तरीके से जिक्र करने पे नहीं है। इसका मतलब है इल्म की महफिल। आप इस पे हदीस पढ़ के तो देखिए, इसकी शरह बहुत लंबी है। उलमा कहते हैं सबसे बेहतरीन महफिल जिक्र की जो है वो इल्म की महफिल है। मिसाल दूंगी आपको, दौरे कुरान की आपने, मुख्तसर इल्म था उसमें, तर्जुमे के साथ साथ मुख्तसर वजाहत, अल्लाह याद आया कि नहीं? और अगर उसकी जगह एक एक सपारा आप पढ़ रहे हो और 3 घंटा चले आप आके बैठते थे, 2.5 घंटे का भी आते थे, जो भी था जितनी भी जगह आपने जितना भी वक्त लगाया, उस देर में आप 5 पारे तो आराम से पढ़ सकते थे। 5 पारे पढ़ते हुए अल्लाह ज़्यादा याद आया, जन्नत का ज़्यादा शौक बढ़ा, जहन्नुम से ज़्यादा खौफ लगा, या उसे एक दौरे कुरान का पारा पढ़ने से ज़्यादा ये सब हुआ? तो इससे इल्म की महफिल मुराद है। और आपके मेरे लिए ये एक माइल स्टोन है कि अपने कदमों को जमा के जाएं। देखिए मैं आपको एक और बात पे खुश कर दूं, अल्लाह ताला आपसे खुश हो रहा है तो मैं क्यों ना खुश हूँ। आप यहाँ आए हैं, आप यहाँ आके बैठे, आप घर से भी सुन सकते थे, इस वक्त घर से आ रहा है। आप यहाँ आकर क्या ले रहे हैं जो यहाँ आने वाले नहीं ले सके? एक तो बात है ना कि जो जहाँ से ले सकता है वो वहीं से लेगा ना, बाहर वाले नॉर्वे तो नहीं आएंगे ना। बिलफर्ज आप ना आती तो आप किस चीज़ से महरूम होती? नंबर एक, आपको जहाँ देखकर जो मेरे दिल में ईमान बढ़ा। दूसरा, ये जो हम पढ़ रहे हैं, मेरा ये रिकॉर्ड हो रहा है और अल्लाह को पता ही है, शायद हज़ारों जगह पे जाएगा आगे ज़िंदगी, जहाँ तक ये रही फाइलें, अल्लाह इनकी हिफाजत करे। इन्हीं किताबों से दोबारा लोगों को पढ़वाते हैं ना, आज जो आप भी बुक्स पढ़ते हैं वो किसी के साथ पढ़ी ना, तो आप गैर मखसूस तरीके से इस सीरीज़ में शामिल हो गए। तीसरा आपको फ़ायदा क्या हुआ कि आप यहाँ मेरे साथ हदीस दोहरा रहे हैं। बहुत कम लोग होंगे जो घर में बैठ के ख़ुद साथ दोहरा रहे हो, अगर दोहरा रहे हैं और वाकई वो हमारे साथ हैं। कई लोग नॉर्वे से बाहर हैं, वो हमारे साथ हैं, क्योंकि वो नहीं आ सकते, जिधर है वो उससे फ़ायदा तो उठा रहे हैं ना। फिर एक और आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपको यहाँ दुआ याद होने करने का मौका मिला। तो ये बात आप उस बात पे लीजिए कि ये तो वो महफिल है कि जिनके साथ बैठने वाला भी महरूम नहीं रहता। तो ये चीज़ कल आपको यहाँ लेकर आएगी। तो अगर आप इस पूरी सीरीज़ में मेरे साथ रहे तो आपका खामोश सदका, मेरी आवाज़ तो सब पहचान लेंगे। ये जो हदीस पढ़ते हुए आप बोलते हैं ये तो कोई नहीं पहचानेगा ना, तो इसमें तो और इखलास है। तो हमेशा याद रखिए, इल्म की महफिल जैसी कोई महफिल नहीं है, जहाँ अल्लाह भी याद आता है, जन्नत का भी शौक आता है और जहन्नुम से भी इंसान बचना चाहता है। अल्लाह ताला में अमल की तौफीक अता फरमाए। और ये बात कितनी खूबसूरत है कि अगर जन्नत देख लेते तो कितनी तलब होती, और अगर जहन्नुम देख लेते तो कितना डरते। हम दुनिया में किसी जगह की तस्वीरें देख लेना तो हमारा दिल जो है ना उसके लिए ऐसे खुल जाता है, शौक बढ़े, हमने अपनी फैमिलीज़ को लेकर जन्नत तक साथ जाना है। इसके लिए ये छोटी छोटी चीज़ें इंसान को मदद देती हैं। अब अगली रिवायत जो अबू दरदा से है, इसको ज़रा दोहराइएगा। नबी सल्लम ने फरमाया, अला उनब्बियुकुम बिखैरी आमालिकुम अस्काहा इंद मलीकिकुम वारफाइहा फी दरजातिकुम वखैरिल्लकुम मिन इन्फाकिस ज़हबी वल्वरिक वखैरिल्लकुम मिन अन तलकौ अदुवकुम फतद्रिबू अनाकहुम वयद्रिबू अनाककुम कालू बला قال ذکر اللہ تعالی۔ جی ایک ایکسٹرا آپ کا بینیفٹ ہے کہ حدیث کبھی اس طرح شاید عربی میں پڑھی نہ ہو۔ چلیے، کیا میں تمہیں ایسے عمل کی خبر نہ دوں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر، تمہارے آقا و مولا کے نزدیک سب سے اچھا، سب سے زیادہ پاکیزہ، تمہارے درجوں میں سب سے زیادہ اضافہ کرنے والا، تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر، اس سے بھی بہتر کہ تم دشمن سے مقابلہ کرو اور تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں ماریں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی، کیوں نہیں، ضرور بتلائیے۔ تو آپ نے فرمایا، وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ کیا پتہ چلا؟ دیکھیے، ہم میں سے ہر ایک کو تو موقع نہیں ملتا نا میدان جنگ میں جا کر دشمن سے لڑنے کا، اور سونا چاندی بھی ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا کہ وہ خرچ کر دے۔ تو یہ ذکر اذکار، یہ محفلیں آپ کے میرے لیے ہمارے اعمال کی کمی بیشی کو پورا کرواتی ہیں۔ ایک اور حدیث ہے اسی موضوع میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ان للہ
تبارک و تعالی ملائکتن سیارتن فضلن یبتغون مجالس الذکر فإذا وجدوا مجلسا فيه ذکر قعدوا معهم وحف بعضهم بعدا بأجنحتهم حتى يملؤوا ما بينهم وبين السماء الدنيا فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء قال فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم من أين جئتم فيقولون جئنا من عند عباد لك फिल अर्दी यूसफ बेहूनक वयुकब बिरूनक वयुहल्लिलूनक वयहमदूनक वयसलूनक قال وماذا يسألونني قالوا يسألونك جنتك قال وهل رأوا جنتي قالوا لا أي ربي قال فكيف لو رأوا جنتي قالوا ويستجيرونك قال ومما يستجيرونني قالوا من نارك يا رب قال وهل رأوا ناري قالوا لا قال فكيف لو رأوا ناري قالوا ويستغفرونك قال فيقول قد غفرت لهم وعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا قال يقولون ربي فيهم فلان عبد خطأ إنما مر فجلس معهم قال فيقول وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. کتنی خوبصورت حدیث ہے, ترجمہ دیکھیے گا. بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے گھومنے پھرنے والے ہیں, حفاظت کرنے والے فرشتوں سے الگ, یعنی کچھ تو ہیں جو ہماری حفاظت کرتے ہیں نا, یحفظونہو, لیکن کچھ صرف زمین میں گھومتے ہیں اور ان کا نام ہے ادھر سیارہ, گھومنے پھرنے والے. جیسے سیارہ کا لفظ کس کے لیے بولتے ہیں, ٹورسٹ کے لیے بولتے ہیں نا, سیر کرنے والے, گھومنے والے. وہ دنیا میں بس گھومتے رہتے ہیں. کیوں؟ وہ ذکر کی مجلسوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں. جب وہ کوئی ایسی مجلس پاتے ہیں جس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو تو ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں, اور بعض فرشتے بعض کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں, یہاں تک کہ وہ ان کے اور آسمان دنیا کے درمیان فاصلے کو اپنے وجود سے بھر دیتے ہیں. پھر جب لوگ منتشر ہو جاتے ہیں, یعنی ڈسمس ہو گئے, چھٹی ہو گئی, تو کیا ہوا؟ تو یہ فرشتے آسمان کی طرف چڑھ جاتے ہیں. آپ نے فرمایا, پس اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے, حالانکہ وہ خوب جانتا ہے, تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں, ہم تیرے ان بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو زمین میں ہیں, اور تیری پاکیزگی, تیری بڑائی, تیری توحید و عظمت اور تیری حمد بیان کر رہے تھے اور تجھ سے سوال کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے, وہ مجھ سے کیا سوال کر رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں, وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے, کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں, نہیں پروردگار. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اگر وہ میری جنت دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں, وہ تجھ سے پناہ بھی طلب کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے, وہ کس چیز سے مجھ سے پناہ طلب کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں, پروردگار تیری آنکھ سے. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں, کیا انہوں نے میری آنکھ دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں, نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اگر وہ میری آنکھ دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں, وہ تجھ سے بخشش بھی مانگ رہے تھے, اپنے گناہوں کو یاد کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, میں نے ان کو بخش دیا. اللہ ہمیں بھی بخش دے. وہ جس چیز کا سوال کر رہے تھے میں نے وہ ان کو عطا کر دی. ہم بھی مانگ لیں, اللہم انی اسألک الجنہ. مانگی, اللہم انی اسألک الجنۃ بغیر حساب, کہ اللہ ہمیں بے حساب کے جنت دے دے. اور جس چیز یعنی آگ سے پناہ طلب کر رہے تھے اس سے میں نے ان کو پناہ دے دی. ہم بھی مانگ لیں, اللہم اجرنی من النار. آپ نے فرمایا, فرشتے عرض کر رہے ہیں, اے پروردگار, ان میں فلاں آدمی تھا, وہ تو بہت گناہگار بندہ. دیکھیے ذرا کیسے بول کھلتے ہیں. پھر جو صرف وہاں سے گزرتا ہوا ان کے ساتھ بیٹھ گیا تھا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اسے بھی بخش دیا، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والے بھی محروم نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے بھی گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث جو فرشتوں کے نزول پر دلالت کرتی ہے، یعنی اس کی دلیل میں پیش کی جاتی ہے، اس حدیث میں بھی ذکر کرنے والوں کی شان اور عظمت کو بیان کیا گیا۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں اس حدیث کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل الا خفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده۔ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے بیٹھتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت ان پر چھا جاتی ہے، سکینت ان پر نازل ہوتی ہے، اور اللہ کا ذکر ان لوگوں میں فرماتے ہیں جو ان کے پاس ہے۔ ذرا نوٹ کریں گے، آپ کو اس وقت بھی کوئی سکون محسوس ہو رہا ہے؟ اور آپ دیکھیں کہ فرشتے گھیرتے ہیں، تو وہ جگہیں بڑی پاک، صاف، آرگنائزڈ، سلیقے سے چیزیں رکھی والی ہونی چاہیے جہاں فرشتے ہیں۔ ہمارے گھر میں کسی بڑے انسان نے آنا ہو تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں اپنے گھر کو ٹھیک کرنے کو۔ تو ہمیشہ جب بھی علم کی محفل میں آئیں تو سوچا کریں کوئی میرا عمل یا میرا حلیہ یا میری کوئی جگہ ایسی تو نہیں ہے جو فرشتوں کو آنے سے روک دے۔ پھر سکینت نازل ہوتی ہے۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ پیس، ٹرینکولیٹی، سکون ملتا ہے کہ نہیں؟ سچ بتائیں، آپ 3 گھنٹے کے لیے فلم دیکھتے ہیں، اس کے بعد کی کیفیت اور 3 گھنٹے قرآن کی محفل میں آنے کے بعد کی کیفیت فرق ہوتی ہے کہ سیم ہوتی ہے؟ اس کا تو فلمیں دیکھتے ہیں۔ آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم فلم کے لیے 3 گھنٹے نہیں لگا سکتے، ہماری زندگی بہت مختصر ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ تھا اس کا ٹھیک جواب، لیکن شروع میں ایسی غلطیاں کریں گے تو پتہ چلے گا نا۔ چلیے، ان 3 احادیث میں اہل ذکر کے فضائل اور ان کے انعامات کو بیان کیا گیا، یعنی اللہ رب العزت کے حکم سے فرشتوں کا نازل ہونا، پھر اہل ذکر کو ڈھونڈنا، ان پر پروں کا سایہ کرنا، پھر رحمت اور سکینت سے اہل ذکر کا فائدہ مند ہونا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے روبرو ان سعادت مند لوگوں کی تعریف کرنا۔ دیکھیں یہ بھی تو بات ہے نا، بار بار ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، کس ناطے سے؟ عزت ہو رہی ہے نا، آپ یہاں بیٹھے ہوئے آپ کے تذکرے آسمانوں پہ ہو رہے ہیں، اور کیا چاہیے؟ پھر خود قادر و کریم کا فرشتوں کے سامنے اہل ذکر کی تعریف کرنا، یہ بہت بڑی سعادت اور عظیم کامیابی ہے۔ زمین پر بسنے والوں کی تعریف اللہ کریم آسمان کی پاکیزہ مخلوق میں کرے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ذرا سا اخبار میں نام چھپ جائے، میڈیا پہ آ جائے، کیسے لوگ اچھالتے پھرتے ہیں خبروں کو، فلاں ریڈیو پہ آیا، فلاں ٹی وی پہ آتا ہے، فلاں ادھر آتا ہے، تو آتا رہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن لوگ ان چیزوں کو پروٹوکول بناتے ہیں۔ تو جہاں آسمانوں پہ ملائے اعلیٰ میں بات ہو، وہ کتنی بڑی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، اپنے مقرم بندوں میں شامل کر لے، اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عمل کیسے کریں؟ دیکھیں، ہر وقت نہ تو میں اور آپ علم کی محفل میں بیٹھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک کام ہم ہر وقت کر سکتے ہیں، دل میں اللہ کو یاد رکھنا۔ زبان کا ذکر بھی ہم ہر وقت نہیں کر سکتے، دل میں اللہ کو یاد رکھیں۔ اس پہ بہت خوبصورت ٹاپک ہیں، اور اس پہ بہت دفعہ بات بھی ہوئی، ایک پوری بک کہہ رہے ذکر کے بارے میں، مجھے یاد ہے میں نے اس میں سے بہت کچھ پڑھایا تھا، تو اس میں ایک بات یاد آ گئی امام ابن قیم رحمہ اللہ کی، کہتے ہیں کہ ایمان والا تو گناہ کرتے ہوئے بھی اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ پکڑ لینا اس نے مجھے، یہ بھی مزہ کر رہی ہوں نا، بعد میں لگ سمجھ آنی۔ تو یہ بھی، جب بندے کو گناہ کی محفلوں میں اس طرح کی کیفیت آنے لگے، تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟